بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز.
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متر, زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں. شروتاؤں, آج قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت کرمانگ 14 اور 15 کی تلاوت کر کے آج کے کارکرم کی شوبھا بڑھائی ہے قاری قاسم رضی نے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العلي العظيم.
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے, لوگوں کے لیے پتنیوں, سنتانوں, سونے چاندی سے بٹورے ہوئے دھن, اچھے گھوڑوں, مویشیوں تتھا کھیتیوں سے پریم کو اچھا دکھایا گیا ہے. ये सब सांसारिक जीवन की नश्वर वस्तुएं हैं और अल्लाह के पास अच्छा प्रतिफल है। हे पैगंबर, कह दीजिए कि मैं तुम्हें इससे अच्छी वस्तुओं की खबर देता हूँ। जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके लिए अल्लाह के पास ऐसे बाग हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं और वहाँ वे सदैव रहेंगे। उनकी पत्नियाँ होंगी और अल्लाह की प्रसन्नता होगी और अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है दोस्तों, सभा में आप सभी का स्वागत है। आज शुक्रवार है, मार्च की तीसरी, स्वंद माह की 12 और शाबान की 10 तारीख। कार्यक्रमों की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। पहले हम आपको विश्व समाचार सुनाएंगे, फिर उसके बाद राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के उपरांत आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम होगा पत्र संसार, और सभा के अंत में साप्ताहिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा विज्ञान की डगर। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। ईरान का कहना है कि इसराइल की हर धमकी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वेनेजुएला ने ईरान और रूस को अपना पुराना दोस्त बताया है। पवित्र नगर करबला में 15 शाबान की तैयारियां जोरों पर हैं। राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र की स्थिति को चिंताजनक बताया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। ईरान का कहना है कि इसराइल की हर प्रकार की धमकी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरानी राजदूत अमीर सईद ईरवानी ने ज़ायोनी अधिकारियों के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया दी। अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने राष्ट्र संघ के महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के नाम अलग अलग पत्रों में बल देकर कहा है कि ईरान ज़ायोनी शासन की हर प्रकार की धमकी का करारा जवाब देगा। ईरानी राजदूत अमीर सईद ने अपने पत्र में लिखा कि ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण केंद्रों पर सैनिक हमले पर आधारित ज़ायोनी शासन के प्रधानमंत्री के 21 फरवरी के बयान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ और राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र के विरुद्ध हैं। वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने इस्लामी गणतंत्र ईरान और रूस को पुराना सहयोगी बताया है। एवेंजील बिंटो ने वेनेजुएला की दृष्टि से ईरान तथा रूस की समीक्षा करते हुए कहा, इन दोनों देशों के साथ हम ऊर्जा, खाद्य पदार्थ, तकनीक, परिवहन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि वेनेजुएला लगातार ईरान और रूस के संपर्क में है, जिनके साथ उसके बहुत मजबूत रिश्ते हैं। वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि उनके देश ने ईरान के साथ 20 वर्षों का एक स्ट्रेटेजिक गठबंधन तैयार किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दशकों से इस्लामी गणतंत्र ईरान के संबंध उन देशों से विस्तृत होते जा रहे हैं जो पश्चिम, विशेषकर अमरीका की विस्तारवादी नीतियों के विरोधी हैं। آیت اللہ یاسین الموسوی نے کہا ہے کہ امریکہ پوری طرح سے عراق کو نشٹ کرنا چاہتا ہے۔ عراق کے دھرم گرو آیت اللہ سید یاسین الموسوی کہتے ہیں کہ عراقیوں کے بیچ مدبھید پیدا کر کے امریکہ پچھلے دو دہشکوں سے اس دیش کو لگاتار نقصان پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انیتکتا کو پھیلا کر آرتھک بھرشٹاچار کو بڑھاوا دیتے ہوئے وہ عراق کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بغداد کے امام جمعہ نے کہا کہ عراقیوں کو چاہیے کہ وہ راشٹری ہتوں پر اپنے نجی ہتوں کو اندیکھا کر دیں۔ الموسوی نے کہا کہ مدھیہ پور، افریقہ مہادویپ، ایشیا اور یورپ میں جو پریورتن ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ جاننا چاہیں کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے تو ہم کو اپنے دھیان کو وشو کے پریورتنوں پر کیندرت کرنا چاہیے۔ امام مہدی علیہ السلام کے شبھ جنم دیوس کے اپلکش میں منائے جانے والے کارکرموں کی تیاریاں پوتر نگر کربلا میں اپنے چرم پر پہنچ چکی ہیں۔ ہر سال امام مہدی علیہ السلام کے شبھ جنم دیوس کے افسر پر بہت بڑی سنکھیا میں عراق اور ودیش سے لوگ پوتر نگر کربلا میں آیوجت کارکرموں میں بھاگ لینے کے لیے پہنچتے ہیں۔ ان کی سرکشا کے لیے عراقی سرکشا بلوں نے اپنی تیاری پوری کر لی ہے۔ اس سندر میں کربلا پرانت کے پولیس پرمکھ نے بتایا ہے کہ یہاں پر آنے والے شردھالوؤں کی سرکشا کے دشٹیگت ہر استر پر سرکشا بڑھا دی گئی ہے۔ اس بار 8 مارچ کو امام مہدی علیہ السلام کا شبھ جنم دیوس پورے ہرش الاس کے ساتھ منایا جائے گا۔ اتری کوریا کا ماننا ہے کہ شیتر میں امریکہ کے سنیکت سین ابھیاس ایک بڑے یدھ کا کارن بن سکتے ہیں۔ اتری کوریا نے چیتاونی دی ہے کہ امریکہ اور دکشنی کوریا کے سنیکت سینیہ ابھیاس کے جواب میں پرشانت مہاساگر گولی باری کے میدان میں بدل جائے گا۔ امریکہ اور دکشن کوریا کی سینا نے شکروار کو ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں دیش شیلڈ آف فریڈم کے نام سے ایک سنیکت سین ابھیاس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سین ابھیاس 13 مارچ سے 23 مارچ تک جاری رہے گا۔ اس سنیکت بیان میں کہا گیا ہے کہ اتری کوریا کی پرمانو اور میزائل دھمکیوں کے مقابلے میں یہ سنیکت سین ابھیاس چھیتر کو مضبوط کرے گا۔ یون سوک یول نے جب سے مئی میں دکشنی کوریا کے راشٹرپتی کا پد سنبھالا ہے اس سمے سے انہوں نے امریکہ کے ساتھ سنیکت سین ابھیاس کو آرمبھ کر رکھا ہے۔ یہ وشے اتری کوریا اور چین کی کڑی پرتکریاؤں کا کارن بنا ہے۔ زائونی شاسن کے پورو پردھان منتری نے اسرائیل کی آنتک سرکشا کے منتری اتمار بن گوویر کو آتنکوادی کہا ہے۔ فلسطین کی سماچار ایجنسی شہاب کی رپورٹ کے انوسار اولمرٹ نے ایک ساکشاتکار میں کہا ہے کہ بن گوویر آتنکوادی ہے۔ اس آدھار پر مجھے اپیکشا تھی کہ پولیس پچھلے دن پردرشنکاریوں کے خلاف ہنسا کا پریوگ کرے گی۔ اسی پرکار انہوں نے کہا کہ میں عرب ناگرکوں کا آہوان کرتا ہوں کہ وہ فلسطینیوں کو جلائے جانے اور ان کی ہتیا کا سمرتھن کرنے والی سرکار ورودھی پردرشنوں میں بھاگ لیں۔ اسرائیل کے پورو یدھ منتری نے بھی پردرشنکاریوں پر حملے اور پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپوں کے بارے میں نتنیاہو سرکار کو چیتاونی دی ہے۔ بدھوار کو بھی تل اویو میں نتنیاہو کی سرکار کے خلاف پردرشن ہوئے تھے جو پولیس کے ہستکشیپ کے کارن ہنسک روپ دھارن کر گئے تھے۔ اسرائیلی ستوں نے بتایا کہ زائونی شاسن کی پولیس نے سرکار ورودھی پردرشنوں میں بھاگ لینے کے آروپ میں 29 لوگوں کو گرفتار کر لیا جبکہ اس پردرشن میں 11 لوگ گھائل ہو گئے۔ افغانستان کے پورو راشٹرپتی اشرف غنی کے کال کے سینیہ ادھیکاری اس سمے بھارت میں بھٹک رہے ہیں۔ بھارت میں افغانستان کے سینیہ ادھیکاریوں کے ریزیڈنس پرمٹ سماپت ہونے کے بعد یہ ادھیکاری اب دھرم سنکٹ میں پھنس گئے ہیں کیونکہ بھارت کی سرکار اس کے ایکسٹینشن میں ادھک روچی نہیں لے رہی ہے۔ افغانستان کی پورو سرکار کے کچھ سینیہ ادھیکاری جو اشرف غنی کے شاسن کال میں بھارت گئے تھے اس سمے اپنے ریزیڈنس پرمٹ کے سمے اودھی سماپت ہو جانے کے کارن ادھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سینیہ ادھیکاری اب نئی دلی میں افغانستان کے راجدوت سے اس معاملے میں ہستکشیپ کی مانگ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نئی دلی میں افغانستان کا دوتاواس اس معاملے میں بالکل بھی گمبھیر نہیں ہے۔ ان سینیہ ادھیکاریوں میں سے ایک نے بتایا کہ ہمارے راجدوت ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ विशेष बात यह है कि भारत में इस समय अफगानिस्तान के जो राजदूत हैं वे अशरफ गनी सरकार के काल के हैं। अशरफ गनी की सरकार गिर चुकी है और उनके स्थान पर अफगानिस्तान की सत्ता अब तालिबान के हाथों में है। तालिबान ने अपनी ओर से अभी तक भारत के लिए कोई भी कूटनयिक नहीं भेजा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों पर भी हमले किए जा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना था कि अगर कोई आलोचना करता है तो उसको धमकाया जाता है। उन्होंने कहा कि मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा किया जा चुका है। राहुल गांधी के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में भाषण देते हुए कहा कि भारत में बड़ी संख्या में नेताओं के फोन पर पेगासस होता है। मुझको खुफिया अधिकारियों द्वारा बुलाकर बताया गया कि कृपया सावधान रहिए, आप जो फोन पर बोलते हैं वो रिकॉर्ड होता है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जिनको वास्तव में आपराधिक मामलों के अंतर्गत दर्ज नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के निकालने के कारणों को बताते हुए उन्होंने कहा कि जब लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला हो रहा है तो फिर विपक्ष के रूप में संवाद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए लोगों से बात करने के लिए हमने ये यात्रा निकाली। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के विदेश मंत्री भारत पहुंचे थे। भारत के विदेश मंत्री ने उनसे मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ने की आशंका बनी हुई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को चीन के विदेश मंत्री के साथ हुई बैठक में कहा था कि भारत चीन के बीच संबंध असामान्य है। बैठक में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों की चुनौतियों, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्र में शांति और स्थिरता से जुड़ी चुनौतियों से निपटने पर चर्चा हुई थी। भारत और इटली ने रक्षा सहयोग का नया अध्याय आरंभ किया है। भारत के प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ व्यापक वार्ता के बाद कहा था कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को राजनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला किया है। सऊदी अरब में पहली बार भारतीय वायुसेना के 8 विमान उतरे हैं। परंपरागत रूप से डिफेंस के मामले में सऊदी अरब पाकिस्तान का करीबी रहा है। यही कारण है कि सऊदी अरब ने भारत के साथ रक्षा संबंधों को कम कर रखा था, लेकिन वर्तमान राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए सऊदी अरब तेजी से अपने संबंधों को भारत के साथ मजबूत करता जा रहा है। भारतीय वायुसेना के 8 लड़ाकू विमान सऊदी अरब की धरती पर उतरे। अब तक के इतिहास में यह पहला मौका है जब भारतीय वायुसेना के विमान सऊदी अरब की धरती पर उतरे हैं। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। क्या ज़ायोनी शासन के पापों का घड़ा अब फूटने वाला है? इसराइल में गृह युद्ध की स्थिति का जायजा ले रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
चरमपंथी ज़ायोनी पार्टी यहूदी महानता के प्रमुख और बिन्यामिन नेतन्याहू की कैबिनेट में आंतरिक सुरक्षा के मंत्री इतमार बिन गवीर ने پدبھار سنبھالنے کے بعد اوید قبضے والے فلسطینی علاقوں میں استھت زائنی بستیوں میں بسنے والے زائنیوں کو سشستر کرنا شروع کر دیا تھا، جس کے پریڑام سروپ اب خود زائنی سماج سشستر ٹکراؤ اور سنگھرش کی اور بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ زائنیوں کو سشستر کرنے کا مکھ لکش فلسطینیوں کو نشانہ بنانا تھا، لیکن اب یہ وار الٹا پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسرائیل میں 8 ہفتوں سے جاری شانتی پورن ویرودھ پردرشن کے بعد بن گویر نے تتھا کتھت نیائک سدھاروں کے قانون کے ویرودھیوں کو نشانہ بنانے کا آدیش جاری کر دیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 11 نتنیاہو ویرودھی زخمی ہو گئے اور 30 سے زیادہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ بن گویر نے پولیس کا سمرتھن حاصل کرنے کے لیے حال ہی میں ان کے ویتن میں اضافہ کیا ہے، جس کے بعد سے اس بات کی آشنکا بڑھ گئی ہے کہ وہ اپنے راجنیتک ویرودھیوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے پولیس بل کا استعمال کریں گے۔ کچھ ہی دن پہلے نتنیاہو کے ویرودھیوں نے ایک سینے چوکی سے ایک ٹینک کو چورا لیا تھا اور پردرشنوں میں اسے پردرشت کیا تھا۔ واستو میں اپنی اس حرکت سے بھی یہ سندیش دینا چاہتے تھے کہ ان کا ویرودھ صرف شانت موڈ نہیں رہے گا، ضرورت ہوئی تو وہ سشستر سنگھرش کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سینا بھی نتنیاہو کے ویرودھیوں کے پکش میں ہے۔ پردرشنکاریوں اور نتنیاہو کے ویرودھیوں کو ہتھیاروں کی آپورتی کی سمبھاونا بڑھ گئی ہے۔ اگر بن گویر کے نیتتو میں آنترک سرکشا منترالے پولیس اور نتنیاہو کی سرکار کے سمرتھکوں کو مضبوط اور ہتھیاروں سے لیس کرتا ہے تو سینا سرکار ویرودھیوں کو سشستر کرنے میں سکشم ہے، جس سے آنترک ٹکراؤ اور گرہ یدھ کی سمبھاونا بڑھ سکتی ہے۔ اس سندرب میں ایک انیہ مہتوپورن بندو یہ ہے کہ اس میں شامل دونوں پکشوں کے بیچ وواد کا وشے یعنی نیائک سدھار قانون ایسا مدعا ہے جس میں سمجھوتے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے اور اس کا نرنے صرف ہار جیت سے ہی طے ہوتا ہے۔ ویسے بھی دونوں ہی پکش اسے اپنے لیے زندگی اور موت کے روپ میں دیکھ رہے ہیں۔ نیائک سدھار یوجنا کے پریڑاؤں میں سے ایک اسرائیل سے نویش کے تیزی سے باہر جانے اور زائنیوں کا پلائن ہے۔ کچھ وشیشوں کا ماننا ہے کہ زائنی شاسن اگر اس ٹکراؤ کی اور آگے بڑھتا ہے تو اسرائیل اپنا 80واں اوید جنم دن نہیں دیکھ پائے گا اور یہ اوید شاسن اس سے پہلے ہی بکھر جائے گا۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
یوکرین یدھ میں امریکہ اور پشچمی دیش کیا روس کو ہرا پائیں گے؟ جائزہ لے رہے ہیں قائم رضوی۔
نئی دلی میں G20 دیشوں کے ودیش منتریوں کے سمیلن کے اتر امریکہ کے ودیش منتری نے کویٹ سموہ کے دیشوں کے اپنے سمکشوں کے ساتھ ملاقات کی۔ اس سے ایک دن پہلے بلنکن نے دلی میں روس کے ودیش منتری سرگئی لاوروف سے ملاقات کی تھی۔ قریب سال بھر پہلے یوکرین یدھ شروع ہونے کے بعد دونوں نیتاؤں کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ ایک امریکی ادھیکاری کا کہنا تھا کہ اس چھوٹی سی ملاقات میں بلنکن نے روس سے یدھ کو ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ حالانکہ ماسکو کا آروپ ہے کہ یوکرین یدھ کو لمبا کھینچنے میں امریکہ اور اس کے کچھ پشچمی سہیوگیوں کی مکھی بھومیکا ہے۔ امریکہ اور اس کے سہیوگی دیش اس یدھ میں روس کو ہرانے کے لیے جم کر کیو کا سمرتھن کر رہے ہیں اور اسے بھاری ماترا میں ہتھیار دے رہے ہیں۔ روس کے پورو راشٹرپتی اور راشٹریہ سرکشا کے اپ پرمکھ دمیتری میدویدیو نے تو امریکہ کو کڑی چیتاونی دیتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ روس جیسی بڑی طاقت کو ہرانے کے گمبھیر پریڑام ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دے کہ روس کو یدھ میں ہرایا جا سکتا ہے۔ یوکرین یدھ کو لے کر امریکہ اور روس کے بیچ تلخی نئی دلی میں دونوں دیشوں کے ودیش منتریوں کی ملاقات میں بھی دکھائی دی۔ रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि लावरोव और ब्लिंकन की मुलाकात मात्र 10 मिनट से भी कम समय के लिए हुई थी और इस दौरान किसी सौदेबाजी पर कोई चर्चा नहीं हुई। वाशिंगटन के अड़ियल रवैये को देखते हुए फरवरी के आखिरी हफ्ते में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमरीका के साथ हुए ऐतिहासिक परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते को निलंबित कर दिया था और फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने की धमकी भी दी थी। रूस यूक्रेन युद्ध और G20 के देशों का दो फाड़ में बटे होने का असर नई दिल्ली में आयोजित हुई विदेश मंत्रियों की बैठक में साफ दिखाई दिया। इस मुद्दे पर अमरीका और रूस के अधिकारियों के बीच बयानबाजी भी हुई। इसी वजह से मेजबान देश भारत को घोषणा करनी पड़ी कि सदस्य देशों के बीच मतभेदों के कारण कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया जाएगा। अमरीका के विदेश मंत्री का दावा था कि ये बैठक रूस के यूक्रेन पर हमले के कारण बाधित हुई है, तो वहीं रूस के विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों पर ब्लैकमेल करने और धमकियां देने का आरोप लगाया। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का कहना था कि हम शिष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे पश्चिमी साथी इस मामले में बहुत खराब रवैया इख्तियार कर रहे हैं। अब वे कूटनीति के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं। अब वे बाकी दुनिया के साथ केवल ब्लैकमेल और धमकियों की जबान में बातें कर रहे हैं।
और अब रुख करते हैं भारत का। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में चुनावों की मांग की है। ब्यौरा दे रहे हैं श्रीनगर से सिप्ते हसन।
जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व सत्ताधारी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर नई दिल्ली से आह्वान किया है कि जम्मू कश्मीर में तुरंत चुनाव कराए जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ऐसी वाहिद यूनियन टेरिटरी या राज्य है जहां पर पिछले 4 वर्षों से विधानसभा के चुनाव संभव नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि अगर नई दिल्ली ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य है तो उन्हें फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना चाहिए। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव शेख मुस्तफा कमाल ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व युवराज करण सिंह, जो महाराजा हरि सिंह के पुत्र हैं, जो असल जम्मू कश्मीर के महाराजा रहे हैं, ने भी इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि महाराजा करण सिंह ने जो वक्तव्य जारी किया उसमें उन्होंने नई दिल्ली से कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को और ज्यादा न सताया जाए। उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही चल रही है।
एक ही रियासत या अब जिसको हम कहेंगे यूनियन टेरिटरी लद्दाख और कश्मीर में इलेक्शन पिछले करीब करीब 4 साल से नहीं हुए हैं, तो डॉक्टर करण सिंह का बयान जो है बरवक्त था, कोई नई बात नहीं है। तमाम लोगों का मुतालबा ये है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुतालबा ये है।
उन्होंने कहा कि खुद LG भी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक नहीं रख रहे हैं और यहाँ पर लोगों के मफादात को खातिर में नहीं लाया जा रहा है। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री और नई दिल्ली के मौजूदा रजीम पर बल दिया कि वो फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव संभव कराएं ताकि यहाँ पर लोगों की चुनी हुई सरकार वजूद में आए। उन्होंने कहा कि लोग परेशान हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। इस बीच एक बार फिर धार्मिक गुटों के गठबंधन मुतहदा मजलिस उलमा ने कहा है कि रमजान का पवित्र महीना आने वाला है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं वो पिछले 4 वर्षों से अपने निवास में नजरबंद है। उन्होंने कहा कि मीरवाइज की नजरबंदी फौरी तौर पर समाप्त की जानी चाहिए और उन्हें जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन से आह्वान करते हैं कि वो उनकी नजरबंदी को समाप्त करें। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, राजनीतिक चर्चा के बाद अब पेश है आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार।
पत्र संसार। दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपने दीदी मरियम मेहर दादी
और भैया अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
दीदी, कार्यक्रम पत्र संसार की शुरुआत ईमेल से करती हैं। पहले पत्र से किया करती थी, अब पत्र तो नहीं के बराबर हो गए
जी,
तो ईमेल से हमें लगता है आज भी पत्र संसार शुरू होगा। देखना यह है कि ईमेल किस श्रोता का है।
जी, जुबेल सऊदी से फातिमा रजवी लिखती हैं कि प्रोग्राम कुरानेश्वर चमत्कार सुना, बहुत पसंद आया। आज प्रोग्राम में कुरानी आयतों के अर्थ सहित सुनाया गया। इसमें ये बताया गया कि ईश्वरीय आदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ईश्वरीय आदेशों को हूबहू उसी रूप और मूल संदेश के साथ लोगों को सुनाया जाना चाहिए। यहाँ तक कि ईश्वरीय संदेशों को पैगंबर भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इस कड़े नियम का पालन कर ईश्वरीय संदेश को जनकल्याण में लगाया जा सकता है, वरना व्यक्ति विशेष उन्हें अपने फायदे के लिए परिवर्तित कर लेंगे और इन संदेशों का मतलब ही नहीं रह जाएगा।
ये कुरान की आयतें और उनकी तफसीर से संबंधित जो कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार है, दीदी बहुत बरसों से, कई साल से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है
जी,
और चलता रहेगा। ये कार्यक्रम बड़ी जानकारियों वाला है, इसमें बड़ी शिक्षाएं हैं और जीवन कैसे गुजारना चाहिए, सोच कैसे होनी चाहिए, इरादा कैसा होना चाहिए, नियत कैसी रखनी चाहिए, इस तरह के बहुत सारे बिंदु हैं जो इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं और बड़ी अच्छी सीख इस कार्यक्रम से मिलती है। हमारे उन कार्यक्रमों में है ये कार्यक्रम जिन्हें श्रोता काफ़ी पसंद करते हैं।
जी, सज्जाद आजमी लिखते हैं कि हर बार की भांति इस बार भी कार्यक्रम विश्व दर्पण को ध्यान पूर्वक सुना, समीक्षा अच्छी लगी। रईसी जी के शब्द को हर भारतीय मुसलमानों को अपने जीवन में प्राथमिकता देनी होगी, वरना अपनी शाख को बचाना असंभव हो जाएगा। उनके महान विचारों को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, ऐसी हम सभी मुसलमानों से आशा रखते हैं। भारत और ईरान की संस्कृति काफ़ी समान है और वर्तमान में दोनों देशों के मध्य नए समझौते निस्संदेह प्रगति के नए द्वार खोलेंगे।
जी, हम भी आशा करते हैं कि भारत और ईरान के संबंध तेजी के साथ आगे बढ़ें, इनका दायरा बढ़े, इनका आकार बढ़े। दोनों देशों के बीच संबंध बहुत पुराने हैं और इन संबंधों में विविधता बहुत ज़्यादा है। ईरान और भारत में बहुत सारी चीज़ें समान मिल जाएंगी अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए, ऐतिहासिक इमारतों को अगर देखा जाए, पुरानी तहरीरों को अगर देखा जाए, हिंदुस्तान का जो पूरा अदालती सिस्टम, उस पर जो ज़बान इस्तेमाल होती है उसको देखा जाए और उस पर फारसी के असर को देखा जाए, तो दोनों देशों के संबंध तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। अब यह है कि नए दौर में उसी अनुपात में दोनों देशों के संबंधों को बढ़ना चाहिए, जो कि अगर गौर किया जाए तो उस स्तर पर नहीं है, जिसका एक बड़ा कारण है जो कि बाहरी कारण है, वो अमेरिका है, अमेरिका का दबाव है। तो आशा ये करनी चाहिए कि ये दबाव नकार दिया जाएगा, इसे नज़रअंदाज किया जाएगा और संबंधों को विस्तार दिया जाएगा। और श्रोताओं, बारी है संस्कृति से जुड़ी खबर की।
तो भैया, आज हम जा रहे ईरान के रेगिस्तान के बारे में जानने
जी।
और ये जो है दो रेगिस्तान है, इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है
जी।
ये बहुत ही बड़े रेगिस्तान है, एक है दश्त कबीर, जिसे कबीर नमक भी कहा जाता है। ये खुरासान, सिमनान, तेहरान, इस्फान, यस के प्रांतों को कवर करता है। और दूसरा कबीर लूत है, कबीर लूत मरुसल, जिसे दश्त लूत के नाम से भी जाना जाता है। ये किरमान, सिस्तान और बलूचिस्तान के प्रांतों में स्थित एक बड़ा नमक का रेगिस्तान है। कहा जाता है कि उनकी समानता के कारण लोगों में बहुत भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। दश्त कबीर ईरानी पठार के बीच में स्थित एक बड़ा रेगिस्तान है। ये लगभग 77,600 वर्ग किलोमीटर के कुल सतह क्षेत्र के साथ लगभग 800 किलोमीटर लंबा और 320 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे दुनिया का 24वां सबसे बड़ा रेगिस्तान बनाता है। और लूत डेजर्ट जो है, जिसे व्यापक रूप से दश्त लूत कहा जाता है, ये भी बड़ा नमक का रेगिस्तान है जो ईरान के केरमान और सिस्तान बलूचिस्तान प्रांतों में स्थित है। ये दुनिया का 33वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और 17 जुलाई 2016 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया था। लूत रेगिस्तान दुनिया भर में अति गर्म और शुष्क रेगिस्तानों में से एक है और लूत रेगिस्तानों को 3 भौगोलिक भू आकृतियों में विभाजित किया गया है। उत्तरी लूत, जो बजरी या कंकर और रेत के तत्वों से बना है
जी।
सेंट्रल लूत दुनिया में अत्यधिक आश्चर्यजनक जगहों में से है, कि एक सबसे आश्चर्यजनक भाग के रूप में कुलुत्स रेगिस्तान, जो पानी, हवा और कटाव तंत्र के परिणाम स्वरूप विभिन्न रूपों में प्राकृतिक लकीरों से उत्पन्न हुई हैं। दक्षिण लूत के प्राकृतिक और विशाल रेतीले टीलों में सबसे समृद्ध वनस्पतियां पाई जाती हैं।
और श्रोता, अब बारी है आपके कमेंट्स की, जो आप वेबसाइट पर मौजूद सामग्रियों पर करते हैं
जी। ईरान ने नया परमाणु पावर प्लांट बनाने का ऐलान कर दिया। इस पर जदीद लिखते हैं, आप ईरान में प्रगति को नहीं रोक सकते, आप बस उसे रोक ही नहीं सकते। ईरान अपने उद्देश्य पर है। इस बरसात और ठंड के दिन को रोशन करने के लिए हमारे लिए आज के दिन की खुशखबरी यही है। आप जहाँ भी हैं, मैं आपके देश के लिए शांति की कामना करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी अच्छी टिप्पणी के लिए और इस अच्छी कामना के लिए। हम भी आशा करते हैं कि आप भी अपने जीवन में सफलताएं अर्जित करें, आपको भी कामयाबियाँ मिलें। जहाँ तक ईरान की प्रगति की बात है, तो ईरान ने रुकावटों के बावजूद बार बार बड़ी ताकतों, विशेष रूप से अमेरिका की ओर से डाली जाने वाली अड़चनों के बावजूद सारे ही क्षेत्रों में हैरत अंगेज तरक्की की है और ये सिलसिला भी जारी है। कुछ गलियारे ये पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि ईरान ने केवल रक्षा और सामरिक क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान ने रक्षा और सामरिक क्षेत्र में बेशक प्रगति की है, जो कि ज़रूरत थी, बहुत ही ज़रूरी इसलिए था कि ईरान में जब से इस्लामी क्रांति आई है, तभी से ईरान के दुश्मन इसे उखाड़ फेंकने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इसका वो ऐलान भी करते रहते हैं। तो ऐसे शासन के लिए ज़रूरी है, ऐसे देश के लिए ज़रूरी है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी इंतज़ाम तैयार रखे। दूसरी तरफ लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान ने सिर्फ सामरिक और रक्षा क्षेत्र में नहीं, बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति की है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति की है, सामाजिक क्षेत्रों में बहुत बड़ी प्रगति की है, सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रगति की है। कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है, हर क्षेत्र में हैरत अंगेज तरक्की की है।
सीमाओं की सुरक्षा और शहीद सुलेमानी की टारगेट किलिंग का मुद्दा विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान की इराक यात्रा का अहम एजेंडा। इस पर फरीद इब्राहिम लिखते हैं, F-35 के लिए इसराइल के हवाई ईंधन भरने वाले टैंकरों को मार गिराने के लिए रेगिस्तान में गुप्त ईरान SAMS को बनाए रखने वाले समझौते को अमरीकी दबाव के कारण खत्म नहीं किया जाना चाहिए।
देखिए, जहाँ तक इस खबर की बात है कि ईरान अपना कोई भी कार्यक्रम किसी भी दबाव में कभी ख़त्म नहीं करता। ईरान के जो भी कार्यक्रम है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, रक्षा कार्यक्रम है, ईरान का मिसाइल कार्यक्रम है, ड्रोन कार्यक्रम है, ईरान किसी भी दबाव में नहीं आता और अपने कार्यक्रमों को जिन्हें वो देश हित में समझता है हर हाल में जारी रखता है। और श्रोताओं, अब बारी है आप में से किसी एक श्रोता के सुंदर विचार सुनने की।
जी, और ये है हमारी श्रोता कर्नाटका से करिश्मा।
मेरा नाम करिश्मा है, मैं साउथ इंडिया से हूँ। एक्चुअली मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश करती हूँ। मैं आपका प्रोग्राम मोबाइल ऐप से सुनती हूँ। मेरी एक दोस्त ने आपके रेडियो के बारे में बताया था। आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, मुझे ईरान के बारे में जानना अच्छा लगता है। आपके यहाँ से आने वाली न्यूज़ में सुनती हूँ। आपकी वेबसाइट मुझे बहुत पसंद है और उसे ईरान के जानकारी मिलती है और कुरान के बारे में भी जानकारी मिलती है। आपका लेटर्स वो जो है प्रोग्राम पत्र संसार भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और धन्यवाद।
तो ये दोस्तों, ये थी हमारी श्रोता करिश्मा
जी।
और आपने इनके विचार सुने और जाने। तो अभी हमारे पास समय है तो मैं एक कमेंट शामिल कर लेती हूँ। क्या अमेरिका चीन और रूस का रास्ता रोक पाएगा? इस पर मोहम्मद आदिल लिखते हैं, अमेरिका हमेशा चीन और ईरान पर यूक्रेन के खिलाफ रूस को हथियार देने का आरोप लगाता रहा है, हालांकि ये दोनों देश ऐसा नहीं करते। ये यूक्रेन को शामिल करने और समर्थन करने के लिए यूरोपीय संघ और अन्य देशों को सही ठहराने और प्रोत्साहित करने के लिए एक रिवर्स मनोविज्ञान रणनीति है और रूस के साथ युद्ध भड़काने में अमरीकी भूमिका को कवर करने के लिए है।
जी, ये यूक्रेन की जंग जिसे अब एक साल का समय हो रहा है, ये बहुत बड़ी जंग बन गई है जिसमें बड़ी ताकतें लिप्त हैं और ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है। एक साल के बाद ये देखने में आ रहा है कि जंग का रूप और भी गंभीर हो गया है और किसी को ये अंदाज़ा नहीं है कि ये जंग कहाँ तक आगे जाएगी। दोनों पक्षों की तरफ से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसके अनुसार बहुत बड़ी संख्या में दोनों देशों के सैनिक मारे गए हैं। कुछ आंकड़ों में 1 लाख सैनिकों तक की और 1.5 लाख सैनिकों तक की बात कही जा रही है कि मारे गए हैं। बहरहाल जितने भी लोगों की जाने जाएं वो दुखद है, इंसानी जानों का जाना दुखद भरी घटना है। इसको जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए और इस पर जो साम्राज्यवादी एजेंडा है उसका सिलसिला बंद होना चाहिए।
तो दोस्तों, समय समाप्त हो रहा है तो अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं।
जी, तो अगली मुलाकात तक श्रोताओं, भैया अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहरदादी को अनुमति दीजिए।
खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम आपने सुना पत्र संसार, इसको पेश किया मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास ने। ये कार्यक्रम कैसा था इस बारे में ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। और अब पेश है सभा का अंतिम कार्यक्रम विज्ञान की डगर।
विज्ञान की डगर।
दोस्तों, कार्यक्रम विज्ञान की डगर के घने कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं مریم مہردادی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔ آج کے کاریکرم میں ہم ایران اور دنیا میں گیان وگیان کے کھیتر میں ہونے والی پرگتی کے بارے میں چرچا کریں گے۔
دوستو، مشہد کے فردوسی وشودیالیہ اور کوچان پرادیوگکی وشودیالیہ کے شودھ کرتاؤں نے پولینڈ کے ایک شودھ کرتا کے سہیوگ سے دھات کاربنک نینو سٹرکچر بنانے میں سفلتا حاصل کی، جن کا اپیوگ CO2 سہت گرین ہاؤس گیسوں کو الگ کرنے اور اس کے بھنڈارن میں کیا جا سکتا ہے۔ گلوبل وارمنگ اس صدی میں مانو جاتی کی سب سے مہتوپورن چنتاؤں میں سے ایک ہے۔ پریاورن کی درشٹیکون سے شودھ کرتا اس گھٹنا کے سب سے مہتوپورن کارڑوں میں سے ایک واتاورن میں CO2 کی ساندرتا اور اس کے گاڑھے پن میں وردھی کو مانتے ہیں۔ اسی آدھار پر دنیا میں گرین ہاؤس گیسوں CO2 کے اتسرجن کو روکنے کے لیے کشل طریقوں کو پردان کرنے اور اپیوگ کرنے کی آوشکتا نے وبھن سنگھنوں کی استھاپنا کی، جیسے کہ جلوائی پریورتن نگرانی کے لیے سنیوکت راشٹر سنگھ کی دیکھ ریکھ میں وشیش آیوگ یا یوروپیہ سنگھ میں SET پلان لاگو کیا گیا۔
گلوبل وارمنگ یا ویشوک تاپمان میں وردھی کیا ہے؟ ویشوک تاپمان میں وردھی سے طوفان، باڑھ، جنگل کی آگ، سوکھا اور لو کے خطرے کی آشنکا بڑھ جاتی ہے۔ ایک گرم جلوایو میں وایو منڈل ادھک پانی اکتر کر سکتا ہے اور بھینکر بارش ہو سکتی ہے۔ گلوبل وارمنگ اودیوگک کرانتی کے بعد سے اوسط ویشوک تاپمان میں وردھی کو درشاتا ہے۔ 1880 کے بعد سے اوسط ویشوک تاپمان میں لگ بھگ 1 ڈگری سیلسیس کی وردھی ہوئی ہے۔ گلوبل وارمنگ ایک ستت پرکریا ہے۔ ویگیانکوں کو آشنکا ہے کہ 2035 تک اوسط ویشوک تاپمان اترکت 0.3 سے 0.7 ڈگری سیلسیس تک بڑھ سکتا ہے۔
گلوبل وارمنگ کا کیا کارن ہے؟ کچھ گیسیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھن پرتھوی کے واتاورن میں سورج کی گرمی کو اپنے اندر روکتی ہیں۔ یہ گرین ہاؤس گیس وایو منڈل میں پراکرتک روپ سے بھی موجود ہیں۔ مانو گتیویدھیوں، وشیش روپ سے بجلی واہنوں، کارخانوں اور گھروں میں جیواشم ایندھن، کوئلہ، پراکرتک گیس اور تیل کے جلنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور انیہ گرین ہاؤس گیسوں کو وایو منڈل میں چھوڑا جاتا ہے۔ پیڑوں کو کاٹنے سہت انیہ گتیویدھیاں بھی گرین ہاؤس گیسوں کا اتسرجن کرتی ہیں۔ وایو منڈل میں ان گرین ہاؤس گیسوں کی اچھ ساندرتا پرتھوی پر ادھک گرمی بڑھانے کے لیے ذمہ وار ہے، جس کے ویشوک تاپمان میں وردھی ہوتی ہے۔ جلوایو ویگیانک مانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کے پیچھے مانو گتیویدھیاں مکھیہ کارن ہیں۔
دوستو، کیا جلوایو پریورتن گلوبل وارمنگ سے الگ ہے؟ انوائرمنٹل اینڈ انرجی اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ کے انوسار جلوایو پریورتن اور گلوبل وارمنگ کا اپیوگ اکثر ایک دوسرے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جلوایو پریورتن موٹے طور پر اوسط موسم جیسے تاپمان، ورشا، آردتا، ہوا، وایو منڈلیہ دباؤ، سمندر کے تاپمان آدی میں لگاتار پریورتن کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، جبکہ گلوبل وارمنگ پرتھوی کے اوسط ویشوک تاپمان میں وردھی کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ گلوبل وارمنگ کا خطرہ موسم، طوفان، لو، سوکھے اور باڑھ سے کیا لینا دینا ہے؟ ویشوک تاپمان میں وردھی سے طوفان، باڑھ، جنگل کی آگ، سوکھا اور لو کے خطرے کی آشنکا بڑھ جاتی ہے۔ ایک گرم جلوایو میں وایو منڈل ادھک پانی اکتر کر سکتا ہے اور بارش کر سکتا ہے، جس سے ورشا کے پیٹرن میں بدلاؤ ہو سکتا ہے۔
بڑھی ہوئی ورشا سے کرشی کو لابھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی دن میں ادھک تیور طوفانوں کے روپ میں ورشا ہونے سے فصل، سمپتی، بنیادی ڈھانچے کو نقصان ہوتا ہے اور پربھاوت چھیتروں میں جن جیون کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री सतह का तापमान भी बढ़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण की अधिकांश गर्मी समुद्र द्वारा अवशोषित हो जाती है। गर्म समुद्री सतह के तापमान के कारण तूफान का बनना आसान हो जाता है। मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये आशंका जताई जाती है कि तूफान से वर्षा की दर बढ़ेगी, तूफान की तीव्रता बढ़ जाएगी और श्रेणी 4 या 5 के स्तर तक पहुंचने वाले तूफानों का अनुपात बढ़ जाएगा।
बढ़ते समुद्र के स्तर से ग्लोबल वार्मिंग का क्या लेना देना है? ग्लोबल वार्मिंग 2 मुख्य तरीकों से समुद्र के जल स्तर को बढ़ाने में योगदान देता है। सबसे पहले गर्म तापमान के कारण ग्लेशियर और भूमि आधारित बर्फ की चादरें तेजी से पिघलती हैं, जो जमीन से समुद्र तक पानी ले जाती हैं। दुनिया भर में बर्फ पिघलने वाले क्षेत्रों में ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और पहाड़ के ग्लेशियर शामिल हैं।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2019 के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह 21 तक 80% ग्लेशियर पिघलकर सिकुड़ सकते हैं। दूसरा, गर्मी संबंधी विस्तार, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्म पानी अधिक जगह लेता है, जिसके कारण समुद्र का आयतन बढ़ जाता है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। अन्य कारक समुद्र के स्तर को प्रभावित करते हैं और इन सभी कारकों के संयोजन से पूरे ग्रह में समुद्र के स्तर में वृद्धि की अलग अलग दर होती है। स्थानीय कारक जो समुद्र के स्तर को कुछ क्षेत्रों में तेजी से बढ़ने का कारण बन सकते हैं, उनमें समुद्र की धाराएं और डूबती हुई जमीन की सतह आदि शामिल हैं।
दोस्तों, 1880 के बाद से वैश्विक औसत समुद्र स्तर में 8 से 9 इंच की वृद्धि हुई है। कम उत्सर्जन वाले परिदृश्य के तहत मॉडल परियोजना है कि समुद्र के स्तर में वृद्धि सदी के अंत तक 2000 के स्तर से लगभग 1 फुट ऊपर हो जाएगी। एक उच्च उत्सर्जन परिदृश्य के तहत समुद्र का स्तर 2100 तक 2000 के स्तर से 8 फीट से अधिक बढ़ सकता है।
ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण और उससे होने वाले नुकसान पर हमने थोड़ी चर्चा की और अब अपने मुख्य विषय की ओर पलटते हैं। मशहद के फिरदौसी विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर के अनुसार दुनिया में CO2 गैस के पृथक्करण और भंडारण के लिए मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOF सबसे महत्वपूर्ण सामग्रियों में से है।
इस क्षेत्र में अनुसंधान के महत्व को देखते हुए इस परियोजना में कॉपर कोर पर आधारित एक कार्बनिक धातु ढांचे वाले नैनोकणों को तैयार किया गया है और CO2 गैस को नियंत्रित करने में इसकी दक्षता का मूल्यांकन किया गया है। इस शोधकर्ता के अनुसार हमारे अध्ययनों ने गैस मिश्रण से CO2 गैस अवशोषण के क्षेत्र में MFUM1CU का उल्लेखनीय प्रदर्शन दिखाया है।
ऐसे में इसके प्रदर्शन को अन्य समान यौगिकों के साथ प्रतिस्पर्धी माना जा सकता है। इस मुद्दे और आधुनिकीकरण के लिए ईरान में उद्योगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस संयोजन का उपयोग विभिन्न उद्योगों विशेषकर CO2 गैस के प्रदूषणकारी गैसों को हटाने के लिए किया जा सकता है।
इस शोधकर्ता के अनुसार वर्तमान में MFUM1CU के प्रोटोटाइप प्रयोगशाला पैमाने पर और नॉलेज बेस कंपनी को पंजीकृत करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इस धातु जैविक ढांचे को सोनोकेमिकल विधि का उपयोग करके संश्लेषित किया गया था और मशहद के फिरदौसी विश्वविद्यालय के सम्मान में नामित किया गया था और विश्वसनीय कैम्ब्रिज CST डेटाबेस में पंजीकृत किया गया था। इस शोध के परिणाम 2018 में डॉल्टन ट्रांजेक्शन पत्रिका में प्रकाशित हुए थे।
दोस्तों, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के तेजी से उभरने से बीमारियों और संक्रमण से मृत्यु दर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और ये एक गंभीर और बढ़ती समस्या है। इसलिए कुशल कार्यवाही के साथ नए रोगाणुरोधी तत्वों की पहचान करने की आवश्यकता है। इन नए नैनो मटेरियल्स में से एक जिसने हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से दवा में बहुत ध्यान आकर्षित किया है वो है ग्रेफिन आधारित नैनो मटेरियल्स। इसलिए लोरिस्टन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बर्लिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के सहयोग से इस क्षेत्र में शोध किया है।
लोरिस्टन विश्वविद्यालय के एक संकाय सदस्य के अनुसार अद्वितीय संरचनात्मक विशेषताओं वाले द्विआयामी बहुलक के रूप में ग्रेफिन ने अनुसंधान की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित किया है। पिछले कुछ वर्षों में जीवाणुरोधी गुणों, रोगजनकों की पहचान और निष्क्रियता सहित ग्रेफिन आधारित सामग्रियों के जैव चिकित्सा अनुप्रयोग पर अनुसंधान में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि ग्रेफिन रोगजनक के संबंध में क्रियाकलाप पूरी तरह से समझा नहीं गया है, इसलिए इस शोध कार्य में ग्रेफिन नैनोशीट्स और बैक्टीरिया के बीच संबंध प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
यह तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। दोस्तों, अभी आपने हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सुना विज्ञान की डगर। ये कार्यक्रम और ये सभा आपको कैसी लगी इस बारे में हमें बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.ir/hi। तो दोस्तों, इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज।